कल अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंतर्गत अंत में जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी है वो चिट्ठी ली थी और उसमें दो प्रकरण झेल ले चुके थे। एक प्रकरण तो स्वानुभव दशा में जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं उन प्रश्नों का यहाँ जवाब दिया था और दूसरा प्रकरण लिया था शुभ अशुभ परिणमित होते हुए सम्यक्त का अस्तित्व कैसे पाया जाता है तो गुमास्ता का दृष्टांत दिया था मुनिम का है न। अब उससे थोड़ा आगे नया उसके सामने विषय आ रहा है कि अब सविकल्प द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान बताते वही सम्यक्त्री कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है वहां प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे। पहला कार्य क्या है उसका भेद विज्ञान करने का है। वो भेद विज्ञान में कैसा अपना स्वा का स्वरूप जानना है और बाकी सबको कर्म जानना है। नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। अपने को कैसा जाने कि मैं द्रव्य कर्म से रहित हूँ भाव कर्म से रहित हूँ नो कर्म से रहित हूँ। वास्तव में देखा जाए कि द्रव्य कर्म नो कर्म और भाव कर्म का विस्तार बहुत बड़ा है। 19 नंबर की गाथा है संसार में उसमें प्रश्न यही आया है कि यह आत्मा कब तक अप्रतिबुद्ध बना रहेगा। तो उन्होंने यही कहा है कि जब तक ये आत्मा द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म में ये निज रूप है मैं इन रूप हूँ ये मेरे हैं मैं इनका हूँ ये मेरे रूप थे मैं इन रूप था ये मेरे मेरे रहे हैं और मैं इनका रहूंगा चल मैं ना इस तरीके के तीनों काल संबंधी जो मिथ्या विकल्प करता है वो जीव अप्रतिबुद्ध बना देता है। और जब वो ऐसा निर्णय करता है कि ये द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म न्यारे हैं ये सब उद्गल के कार्य हैं उद्गल रूप हैं अनात्मा हैं आत्मा का स्वरूप नहीं है। थोड़ा विस्तार से एक बात बता दें कि जो रागादि परिणाम आत्मा में होते हैं वे तो भाव कर्म हैं और उनके निमित्त से जो नवीन कर्म आते हैं और बंध को प्राप्त होते हैं वे द्रव्य कर्म कहलाते हैं और नो कर्म उन द्रव्य कर्म के उदय काल में जो संयोग बनते हैं जितने भी वे सब संयोग नो कर्म कहलाते हैं। और इस अपेक्षा देखो तो जितने अपने कुटुंबी जन हैं स्त्री पुत्र आदि हैं किस कर्म में रखोगे नो कर्म में रखेंगे पंच परमेश को नो कर्म गजबात है गुरुदेव नो कर्म गजबात हो गई। थोड़ा समझ ना भाई क्योंकि हमको ये कहा कि ये जो रह गया प्रकरण उसको करें तो मैंने कहा हमें कोई परेशानी नहीं आप तो आदम को बताओ कौन सी चीज अपन को समझनी है हमें समझाने में इसलिए सरल है कि हमें वो लिखी तो है ना हम कई घर हमें करना क्या है वो लिखी है वो लिखी की व्याख्या करना सही मैडम क्योंकि अपने पास जो कुछ भी है निराधार शैली में हम प्रवचन कभी करते हैं। मेरी शैली ये कि पहले आगम में आचार्य ने मूल गाथा में क्या कहा आचार्य ने टीका में क्या कहा उसका भावार्थ क्या लिखा विद्वानों ने उतने ही तो वाँच देने में बहुत सी बातें क्लियर हो जाती हैं और कुछ रह जाएंगी तो उसके लिए अपन है हाँ। और इसमें एक बहुत बड़ी बात वो तो गुरुदेव तक तो ज्ञानियों में बात ले लिया अपन ने समझाया ना गुरुदेव हैं वो तो ज्ञानियों वाली परंपरा में आ गए कि हमारे पूर्व आचार्य हैं भावार्थ क्या है उस विशेष प्रवचन गुरुदेव ने क्या दिया ये वहां तक की बात हो गई अपन तो उनसे अलग वाली बात कर रहे हैं अपनी चलवाएंगे और अपनी बात ये कर रहे हैं कि उतना ये बता देंगे कि वैसे बचेगा तो नहीं कुछ बताने लायक फिर भी एक बात बता दें कि जो ऊपर वाले बताते हैं ऊंचे क्वालिटी के तो जिनकी स्तर अभी नीचा होता है उनको कहीं कहीं चीजें भी ऊंची वाली पकड़ में नहीं आती और अपना स्तर ऐसा है कि हम आपके स्तर पे भी आ सकते हैं और ज्यादा ऊंचे वालों के स्तर पे भी जा सकते हैं ऐसा है ना तो ऊंचे वालों के संग में भी अपन चर्चा कर सकेंगे और उसमें क्वेश्चन और आंसर जो कुछ है शंका समाधान सब करेंगे और जो बिल्कुल नीचे स्तर वाले हैं हम उनकी भाषा में भी उनका समाधान करेंगे ठीक है। तो मैंने कहा कि जो पंच परमेश्वरी हैं, जो प्रशस्त पदार्थ हैं, वे सब नौकर्म, वे तो नौकर्म हैं, जिन परिणामों के निमित्त से भले वे परिणाम निर्मल क्यों न हो, भले वे परिणाम भीतरा भाव रूप क्यों न हो, लेकिन उनका लक्ष्य से, उनके आश्रय से यदि रागादी भाव प्रकट होता है तो वे सब जिनके निमित्त से रागादी होता है वे सब नौकर्म। केवल ज्ञान पर्याय का भी जो चिंतन करेगा उसकी पर्याय में रागादी पैदा होगा, सुनना जरा है। तो हम केवल ज्ञान को अभी किस में रख दें, घबराना नहीं, वो नौकर्म कहने से नौकर्म नहीं हो जाएगा, लेकिन अभी तो विश्लेषण चल रहा है और विश्लेषण में स्वा के सिवाय कोई दूसरी पर्याय को उसमें रखा नहीं जा सकता, चाहे वो निर्मल पर्याय हो चाहे छायक पर्याय हो, कोई उसमें नहीं रखा जा सकता। और उसमें जो कोई होगा वो उसमय होगा, गुण भेद भी अनंत है लेकिन गुण भेदों को उसमें नहीं रखा जा सकता, वे गुण उसमें तन्मय होकर अभेद रहे तो वे रह सकते। इस तरह से स्वपर को जानने में लिखा कि द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार, यानी चैतन्य में चमत्कार, क्या चमत्कार है, यही तो चमत्कार है कि उसके पर्याय भी जो उस चेतन का अनुभव कर रही है, उस स्वभाव का अनुभव कर रही है, वो पर्याय भी उसमें शामिल नहीं है। किसमें शामिल नहीं है, वो चैतन्य में शामिल नहीं है, यद्यपि पर्याय भी चेतन, अनुभव करने वाली पर्याय चेतन और वो चेतन उस अनुभव की पर्याय में विराजमान है, चरण लगे में विराजमान है का मतलब उसका तन्मयता से अनुभूति हो रही, तो भी उस स्वभाव में वो पर्याय नहीं है, हैं? उसको जान रही है, उसका अनुभव कर रही है, उसमें तन्मय हो रही है, वो तन्मय होने वाली ऐसी तन्मय हुई है कि अपनी सत्ता खो बैठी है और जो द्रव्य स्वभाव की सत्ता है बस उसकी अनुभूति कर रही है। क्या कहा, ऐसा उसका करो। जो देखो स्व और पर का भेद ज्ञान में पहला तो इन्होंने ये कहा कि क्या है, थोड़ा जोर ज्यादा आ रही है, दूर कर दे इसको, थोड़ा नहीं इसको थोड़ा दूर कर दे, फिर नहीं वो कोई बात नहीं, सुनते में जो भी प्रॉब्लम हो वो बताना इसलिए जरूरी है, नहीं तो सुन ही नहीं पाओगे, पूरे समय तक बर्बाद हो जाएगा वो, है चलो कोई बात नहीं, वापस आ रहे। सम्यक कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है तो वहाँ प्रथम तो भेद विज्ञान स्व पर का करे, किसका करे, स्व और पर का भेद विज्ञान करे। नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने, ये अपना स्वरूप जानने में मैंने ये बात बता दी कि नो कर्म के अंतर्गत जितने भी जगत में पदार्थ ये पदार्थ दिख रहे हैं, बाह्य ये पदार्थ दिख रहे हैं, पंच परमेश्वरी दिख रहे हैं, हमारे गुरु पर्यंत जो गुरु हैं वे सब, वो परिवार के लोग जितने भी इष्ट मित्र आदि जो भी हैं, ये सब नौकर्म में आते हैं। किसमें आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं, सिद्ध भगवान नौकर्म में जरूर रखे हैं मगर वे स्वयं चैतन्य वस्तु हैं, लेकिन यहाँ की भेद ज्ञान की शैली में ऐसा सही में भेद ज्ञान करा रहे, उसमें स्व को पकड़ा रहे, स्व को पकड़ा रहे तो दो पार्टी बना दी गई, एक स्व की और एक जो नहीं है वो पर की, तो पर वाली में द्रव कर्म नो कर्म भाव कर्म ये सब हैं और नो कर्म वाली पार्टी में जितने भी हैं उन सबको भी रख दिया। और मैंने कहा निर्मल पर्याय को भी किसमें रख दिया, नो कर्म की पार्टी, केवल ज्ञान को किसमें रख दिया, नो कर्म की पार्टी। मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो समय सार में 29 प्रकार के भाव कहे थे, है ना, वो 29 प्रकार के भावों के विषय में हम दो विद्वान कहीं गए थे, शायद जबलपुर गए थे, वो उसमें हमारे साथ में जो विद्वान थे उन्होंने वो 29 भाव वाला प्रकरण लिया, तो उन्होंने क्या कहा, समझाया क्या इन सबको कि देखो कि केवल ज्ञान जड़ है, क्या समझाया, अब सुनना जरा, और इसलिए समझाया उसका, उन्हें तो मालूम ही था, हमें तो उसका प्रमाण ही मालूम था, प्रमाण ये लिखा है कि जो 29 प्रकार के भेद हैं, मोहन कर्म के उदय से गुणस्थान जो ये वर्णय वे क्यों बने आत्मा निरंतर जो अचेतन जिन कहे। जिनेंद्र भगवान ने जिनको अचेतन कहा है वो आत्मा कैसे बन जाएंगे? तो उन्होंने ये कहा कि 29 प्रकार के भावों में तुम्हारे से मार्गना भी वो अचेतन में आई। किस में आएगी? अचेतन में आए। गुण स्थान भी अचेतन में आए। तो मार्गना में एक ज्ञान मार्गना होती और ज्ञान मार्गना के 8 भेद होते, उसमें केवल ज्ञान का भेद गर्भित हो जाता है। तो बताइए वो मार्गना पुद्गल रूप हुई कि नहीं? तो फिर केवल ज्ञान पुद्गल हुआ कि नहीं? मैंने कहा सुनो भैया, सावधानी से सुनना। कदाचित कोई वक्ता केवल ज्ञान को भी लोक कर्म कह देवे, कदाचित वक्ता केवल ज्ञान को पुद्गल बोल देवे, तो एकदम घबराना भी नहीं। हालांकि उसकी ड्यूटी है बोलने के पहले खुलासा करे। जन में श्रोता की इतनी बड़ी ड्यूटी नहीं है कि तुम उल्टा बोल जाओ और वो सहन कर जाए। नया ये श्रोता का कर्तव्य है बिल्कुल तुरंत तो बोलना चाहिए, भाई ये बात मेरी समझ में नहीं आई है, आपने किस अपेक्षा कहा है इसका जरा हमें अपेक्षा बता दीजिए। और अपेक्षा से भ्रम मिट जाता है और अपेक्षा न जानने से भ्रम खड़ा हो जाता है। समझ में आया ना? इसलिए वक्ता की एक भारी जिम्मेदारी टोडरमल जी ने बताई है वक्ता के लक्षण में, कि निश्चय व्यवहार के मर्म का ज्ञाता हो, ताकि जो भी कथन करे वो श्रोताओं के शंकाओं को निराकरण कर सके। उसकी अपेक्षा बताएगा वो निराकरण हो जाएगा। अच्छा आपने इस अपेक्षा कहा है, जैसे उदाहरण दूं ना, कोई पड़ोसी का रतन भी पड़ा है। अब रतन तो बहुत कीमती चीज होती है, सब जानते, लेकिन हमें अपने बच्चे को ईमानदारी सिखानी, तो हम उससे कहेंगे देखो दूसरे का 1000 का नोट हो या रतन हो, उसको धूल समझ करके अपना परिणाम नहीं बिगाड़ना। तो हमने बोला क्या उस रतन को? ना 1000 के नोट को धूल। अब धूल और 1000 के नोट में अंतर है ये अपन सब जानते हैं, आई नहीं? लेकिन हम उसको सिखा रहे बच्चे को, क्या सिखा रहे? ईमानदारी। वहाँ ईमानदारी सिखाने का प्रयोजन है, वहाँ कोई रुपये का डिवेल्युएशन करके वो धूल जैसा बताने का प्रयोजन नहीं। प्रयोजन पे ध्यान रखना है, और प्रयोजन लोगों के ख्याल में आएगा तो ज्ञान सम्यक हो जाएगा, और प्रयोजन ख्याल में नहीं आएगा और अन्न का अगर ग्रहण कर लेगा तो ज्ञान मिथ्या हो जाएगा। आगे देखो, द्रव कर्म लोक कर्म भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने, पश्चात पर का विचार छूट जाए। अभी पहले पर का विचार आए, क्या कह रहे? क्योंकि छूट जाए वही लागू होता है जहाँ आए, आई नहीं तो छूट जाएगी बात कहाँ से ले आए? समझ में आया कि नहीं? ये जरा हमारी ऐसी शैली है कि हम आपको पहले स्थापना करना सिखाएंगे और फिर उसका समापन करना सिखाएंगे। कहना है ना, स्थापना बिना कभी भी विसर्जन नहीं होता। लोक व्यवहार में भी लोग अन्नमति भी हैं, पहले स्थापना करते अपने देवी देवता की और बाद में विसर्जन कर दिए। तो जब विसर्जन करना था तो स्थापना क्यों की? यही तो मैंने प्रश्न पूछा समय सार की 8वीं गाथा में अमृत चंद्राचार्य से, 11वीं गाथा में, कि आपने व्यवहार को निश्चय का प्रतिपादक कहा है और निश्चय को प्रतिपाद्य कहा है। जब व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है तो उसको हे क्यों कह रहे हो? फिर उन्होंने समझाया कि भाई देखो हे इस अपेक्षा कह रहे हैं और प्रतिपादक है, इसलिए दृढ़ता से स्थापना करो उसकी। दृढ़ता से शब्द है अमृत चंद्राचार्य, व्यवहार दृढ़ता से स्थापन करने योग्य है परंतु अनुसरण करने योग्य। समझ में आया कि नहीं? तब भ्रम नहीं होगा। स्थापना भी करेगा तो व्यवहार नहीं बिगड़ेगा, और उसमें उपादेय बुद्धि नहीं रखेगा तो श्रद्धा नहीं बिगड़ेगा, और ये साधना चलती रहेगी, श्रद्धा भी निर्मल होता चला जाएगा और आचरण में पाप से बचता चला जाएगा, धीरे धीरे आचरण में आचरण भी घटता जाएगा और स्वरूप की लीनता वाला काल बढ़ता जाएगा, और इस तरह से आराधना पूरी हो जाएगी। ऐसा चल रहा है आगे, केवल चेतन चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने, पश्चात पर का भी विचार छूट जाए। अब छूट जाए में भी अर्थ करना पड़ेगा जरा, पर का विचार छोड़े कि छूट जाए। छोड़े तो छूटेगा ही नहीं, उसे ऐसा स्वभाव है। विकल्प को छोड़ना चाहो तो नहीं छूटे। जैसे आप नील आ जाए चिंतन करो, जरा आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आएगी नहीं तो एक काम करो, नील के विषय में विचार करना बंद कर दो, समझ आया, अपने आप नील आ जाएगी। ऐसे विकल्पों को छूटना है, छोड़ना है, तो कोई एक दूसरा पक्ष पकड़ लो, और दूसरा पक्ष केवल अपना स्वार्थ है, ठीक है ना। तो स्वार्थ की तरफ तुमने अपने उपयोग को केंद्रित किया, एकाग्र किया, उसमें लगाने का पूरा उग्र पुरुषार्थ किया, तो जितने भी विकल्प हैं वे अपने आप शांत हो जाएंगे, वे विकल्प अपने आप चले जाएंगे, और तुम्हारी अनुभूति में जो आत्मा का स्वभाव है, स्वरूप है, त्रिकाली स्वरूप है, वो पर्याय में, अनुभव में प्रकट हो जाए। चेतन चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने, पश्चात पर का विचार छूट जाए, केवल स्वात्म विचार ही रहता है। अभी जरा सुनना, जरा अभी अनुभूति नहीं हुई, स्वात्म विचार भी अनुभूति का बाधक है। क्या कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो आखिर भले अपने विषय का विचार है, अपने ध्रुव का विचार है, अपने परंपरानामिक भाव का विचार है, अपने त्रिकाली स्वरूप का विचार है, मगर विचार है वह बंध का कारण है, वह आकुलता का कारण है, वह विकल्प पैदा करने वाला है, वो निर्विकल्प होने में साधक नहीं है, बाधक है। तो क्या करना कि स्वाका जैसा विकल्पों में निर्णय किया था वहां स्वाका विचार मात्र रहा, अब विचार भी छूटे, विचार भी ढीला पड़े और उपयोग उग्र होकर के स्वभाव में चला जाए, तो वहां फिर निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी, आत्मानुभूति, निर्मल आत्मा की अनुभूति प्रकट हो जाएगी। वहां अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है, अभी ज्यादा विकल्प वाली दशा में ऐसी अहम बुद्धि धरता है, मैं चिदानंद हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है, रोमांच हो जाता है। ये अभी असली आनंद का, असली अनुभूति का रोमांच नहीं है, ये तो अनुभूति के सन्मुख हुए और बाहर के गेयों की विकल्प मिटे और विकल्प सूक्ष्म रहे, उन सूक्ष्म विकल्पों में आनंद पैदा होता है। ओहो, ये तो अपूर्व जाति का आनंद है, अपूर्व जाति का है परंतु अतीन्द्रिय नहीं, समझ में ना। तो यहाँ लिखा आनंद तरंग उठती है, रोमांच हो जाता है, तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए। कैसा विचार? कि मैं चिदानंद हूँ, ये विचार छूट जाए। मैं शुद्ध हूँ, ये विचार छूट जाए। मैं सिद्ध समान हूँ, सिद्ध हूँ, ये विचार भी छूट जाए। फिर क्या रहे? अनुभव मात्र रहे। क्या रहे? अनुभव। बस अनुभव मात्र रहे तो केवल चिन्ह मात्र स्वरूप भासने लगे, प्रतीति में आने लगे, अनुभव में आने लगे, वहाँ सर्व परिणाम उस रूप में, उस आत्म स्वरूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। सर्व परिणाम, जो भी परिणामों की कहना चाहिए वो ताकत है, वो पूरी की पूरी ताकत अपने स्वभाव में एकाग्र केंद्रित होने लगती, और केंद्रित होकर जब उसमें प्रवर्तती है तब दर्शन ज्ञान आदि का, नए प्रमाण आदि का भी विचार विलय हो जाता है। क्या कह रहे? तो आप तो ये बताओ, मोक्ष मार्ग में आने के लिए और मोक्ष मार्ग में अनुभूति प्रकट करने के लिए नए प्रमाण का कुछ स्थान है कि बिल्कुल नहीं? बोलो, नए प्रमाण का प्रथम स्थान है। क्या कह रहे? अनुभूति का द्वितीय, क्योंकि नए प्रमाण द्वारा वस्तु के यथार्थ निर्णय हुए बिना निर्विकल्प दशा नहीं होती और अनुभूति भी प्रकट नहीं होती। इसीलिए प्रवचन सार में ऐसा लिखा है, इस जीव का प्रथम कर्तव्य तो आगम ज्ञान करना है। क्या लिखा है प्रवचन सार में? इस जीव का प्रथम कर्तव्य तो आगम ज्ञान करना है, पश्चात आगम ज्ञान से आगे जब बढ़ेगा तो तत्व ज्ञान में हेगे उपादेय को जानना है, और हेगे उपादेय जानने के बाद दो पक्ष खड़े करना है, एक स्वाका पक्ष और एक पर का पक्ष। तो पर को अपने से भिन्न जानना है, स्व को अपना स्वरूप जानना है और अपने स्वरूप को जानकर उसमें तो उपयोग को जोड़ना है और संयोगों से उपयोग तो अपने आप छूटे बिना बोलने में भले आ जाए कि संयोगों से उपयोग हटाना है और स्वभाव में लगाना है, कहने में दो है करने में एक ही है, पर जिनका उपयोग स्वभाव में लगता है उनका भेद ज्ञान अपने आप हुए बिना, अरे भेद ज्ञान क्या, भेद ज्ञान का विकल्प मिटता है और अनुभव में भेद भाषित होने लगता है। मैं ज्ञा एक मात्र हूँ और अगर कोई चीजें बाहर के पदार्थ जो सत्तावान है अगर वे मेरे ज्ञान में झलकते हैं तो वे सब पर हैं, ख्याल में ना, तो ज्ञान उन्हें पर की प्रतीति करा रहा है और अनुभूति किसकी हो रही है, स्वाद सही में भी जिससे तुम भिन्न हो उसकी तो अनुभूति कर ही नहीं सकती, सही में ना, और जिससे अभिन्न हो उसकी अनुभूति हुए बिना रह नहीं सकती। ये अनुभूति कब होती है, जब वस्तु किसी से एकाकार होकर तन्मय होती है तो तन्मय हुई की अनुभूति उसकी होने लगती है। मालूम आपको नाटक में भी आनंद कब आता है, जीवों जब कोई सीन चल रहा हो और उस सीन को देखने में इतना तन्मय हो जाए कि मच्छर काट रहे हो उसकी खबर ना हो, समझ आए कि नहीं, और उसमें तन्मय हो गया देखने में। अभी बच्चे जो देखते हैं ना अपना बच्चों का कार्यक्रम, इतने तन्मय हो जाते हैं कार्टून को देखने में कि स्वयं कार्टून बन जाते हैं, क्या है, और इतने एकाग्र, माँ ने वहां भोजन करा दिया उसको मगर उसका ध्यान नहीं गया कार्टून को छोड़ के, क्या खिलाया क्या नहीं खिलाया कितना खिलाया माँ जाने, उसे पता नहीं। देखो गजब बात है, जब वो बच्चे का उपयोग अगर एकाग्र हो जाए तो दूसरी चीज को वो अनुभव नहीं करता है, दूसरी चीज का स्वाद नहीं लेता है, तो ज्ञानी जीवों का उपयोग स्वभाव में तन्मय हो जाए तो अन्य विकल्पों का वो स्वाद ले सकता नहीं, अन्य विकल्प अनुभूति प्रकट होती। वैसे यहाँ जो प्रकरण चल रहा है मैं यही प्रकरण लेने वाला था 146 नंबर गाथा से, जिसमें यही बताया है कि निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति वही समय साथ समय के लिए, और मैं उसमें भी वही तरीका अपनाया है, पहले समय सार पाना है और अनुभव करना है तो उसके पहले विकल्प कौन से आएंगे, मति ज्ञान के कौन से विकल्प आएंगे, शुद्ध ज्ञान के कौन से विकल्प आएंगे, मति ज्ञान के विकल्प स्थूल होंगे, शुद्ध ज्ञान के विकल्प सूक्ष्म होंगे, और तुम्हारे से स्थूल विकल्प और सूक्ष्म विकल्प दोनों विकल्प होने से वे आत्म स्वभाव में आत्मा की अनुभूति में बाधक, इसलिए तुम उग्र पुरुषार्थ द्वारा अपने उपयोग को आत्मानुभूति में लगाना वे विकल्प अपने आप चले जाए। जिसे भगाना हो उसे मत भगाओ, तुम भाग जाओ, क्या कह रहे हैं, ये तरीका नहीं, और ये ऐसा तरीका छह डाला में लिखा है पंडित जी ने दौड़ना, जिन परम पैनी सुबुद्धि छेनी डार अंतर भेदिया वर्णादि और रागादि ते निज भाव को, तो वर्णादि रागादि को न्यारा किया कि निज भाव को न्यारा कर लिया, ये कला है अपनी चीज, पहले तुम तो अपनी चीज समेटो, ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं, वहां से विकल्प हटाओ, मेरी नहीं है इतना जानने में आ गया पर्याप्त है, अब ये मेरी नहीं है तो अब हमें इस पे विकल्प ही नहीं करना, ना ध्यान देना, हमारी चीज कौन है उस पर ध्यान दो, और अपनी चीज मिले तो दूसरे के विकल्प ढूंढने के विकल्प ही छोड़ दो, चल ना, और जब तक ना मिले खोज करो कहाँ है वो वस्तु, तो खोज कहाँ करना, जहां तुमने खोज अनंत काल कर ली हो वहां अब नहीं खोजना, अब तो अनंत काल में तुमने जहां नहीं खोजा है आत्मा को बाहर तो खोजा है, गुरु की कृपा में खोजा है, मंदिर में खोजा है, अन्य जो धर्म स्थल है उनमें खोजा है, बाहर की धर्म क्रियाओं में खोजा है, लेकिन वो बाहर की चीजें ही नहीं है, वो तो स्वयं आत्मा है, बस अब स्वयं आत्मा अपनी पर्याय में अपने ज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान को स्वसन्मुख करके जब अपनी प्रतीति करे अनुभूति करे तो आत्मा पर्याय में अनुभव में आए बिना आवे। तत्पश्चात ऐसा विचार छूट जाए, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे, कौन भासने लगे, चैतन्य आत्मा में चिन्मात्र हूँ ये विकल्प जुड़ जाए और हूँ तो अनुभव में आ जाए। देखो गूंगा पुरुष हो संज्ञा और अंधा हो लेकिन उसके जिभ्या पर मिठाई रखी जाए तो बोलो उसको खाने का जो आनंद आएगा और आंख वाला और बोलने वाला बिल्कुल बढ़िया वाचाल व्यक्ति भी खाए हैं तो उसको जो स्वाद आएगा कोई अंतर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा, मगर एक जगह अंतर पड़ जाएगा। अगर तुमने मिठाई के स्वाद का वर्णन किया तो तुम्हें स्वाद नहीं आएगा, समझ आया कि नहीं, और सीधा उसको चखा और सारे विकल्प छोड़ दिए तो उसका जो स्वाद है वो तुम्हें आएगा। ये तो दृष्टांत दे रहे हैं, आयसन में दृष्टांत को परमार्थ नहीं जानना, दृष्टांत तो समझने का सहारा है पर इतना ही जानना और उसमें कोई तत्व की खोज नहीं करना। तत्व दृष्टांत में होता ही नहीं, क्या ख्याल, तत्व तो अपनी जगह पे मौजूद है मगर अपनी जगह पे अपन कभी पहुंचे नहीं है, ख्याल आया नहीं है, तो उस अपनी जगह का ख्याल दिलाने के लिए वो दृष्टांत का सहारा दिया जाता है। यह है प्रयोजन। यहाँ लिखा है वहां सर्व परिणाम, इस सर्व परिणाम का मतलब ये कि वो जो तुम्हारे पुरुषार्थ की या उपयोग की कहना चाहिए प्रवर्तन वाली शक्ति है वो फैले नहीं, वो एकाग्र होकर के अपने स्वरूप में टिक जाए। सर्व गेयों से हट गई तो वो सारे परिणाम उसके हट गए, और एक गेय एक अपने शुद्ध आत्मा गेय में जम गई तो ये सारे परिणाम एकाग्र होकर स्वरूप में प्रवर्तने लगे। इस तरह वो सर्व परिणाम उस स्वरूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। दर्शन ज्ञान आदि का और नए प्रमाण आदि का भी विचार विलय हो जाता है। चैतन्य रूप जो सविकल्प से निश्चय किया था उसी में व्याप्त और व्यापक रूप या व्याप्त व्यापक रूप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है कि जहाँ ध्यान और ध्येयपना दूर हो गया है, यानी ध्यान और ध्येय का विकल्प मिट गया है, सो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है। समझाया? एक जगह तो ये भी लिखा है, कोई व्यक्ति ने प्रश्न उठाया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि अगर कोई भी तत्व का विचार आता है तो वो तो निर्जरा में बाधक होगा। पंडित जी लिखते हैं कि निर्जरा में बाधक केवल राग भर होता है, यदि वे विचार भी संभाव से वितराग भाव से आए हों तो वे निर्जरा में बाधक नहीं हैं। निर्जरा में तो बाधक कब बनेंगे कि या तो वो तुम्हारे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, राग हो या द्वेष रूप हो, तो वो तुम्हारे निर्जरा में बाधक बन सकते, बाधक मतलब निर्जरा कम होगी, और यदि वितराग भाव से कार्य हो रहा है तो निर्जरा में कोई वितराग भाव बाधक बन सकता। यहाँ लिखा ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है। बड़े नए चक्र ग्रंथ में कोई जन ने पूछा भी था कि जी बड़ा नए चक्र क्या है? देखो भैया वो अभी तो नए चक्र ही बड़ा लिखा है, आगम में बड़े ग्रंथों से अभ्यास किया जाता है ऐसा लिखा है। अब बड़े ग्रंथ कौन कहलाते हैं समझो जरा, अध्यात्म ग्रंथ तो जो कुंद कुंद आचार्य के जो परमागम हैं वे अध्यात्म ग्रंथों परमागम ग्रंथ कहलाते हैं, लेकिन बड़े ग्रंथ नहीं कहलाते। बड़े ग्रंथ कहलाते वे जिनमें सूक्ष्म चर्चा न्याय युक्त चर्चा और बारीकी से विस्तार से केवल ज्ञान गोचर चर्चा लिखी है वे बड़े ग्रंथ कहलाते, और करणानुयोग के जितने भी ग्रंथ हैं वे सब बड़े ग्रंथ हैं। और मालूम टोडरमल जी ने लिखा है कि करणानुयोग के ग्रंथों से ज्ञान अतिशय निर्मल होता है और श्रद्धान अतिशय पक्का होता है। क्या कह रहे हैं? एक बात ध्यान से सुनना, हम ही वक्ताओं में हम लोग ये कहते हैं कि भैया ये सूक्ष्म ज्ञान कोई काम का नहीं है। क्या कहते हैं? ये सूक्ष्म ज्ञान काम का नहीं है, तो इस अपेक्षा कहते हैं कि अनुभव ज्ञान मोक्ष का मार्ग है, क्षयोपम ज्ञान मोक्ष का मार्ग नहीं। लेकिन दूसरी अपेक्षा ये है कि अनुभव ज्ञानियों के जितना जितना क्षयोपम बढ़ता है उतना उतना श्रद्धान और ज्ञान निर्मल होता है। क्या कहा? इसलिए ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है और उसकी वृद्धि से नुकसान नहीं है, नुकसान केवल उसके मिथ्यापन से। तो काय से डरना? ज्ञान के विस्तार से डरना कि मिथ्यापन से डरना? बोलो, इसे ध्यान रखना। पंडित जी ने ये बातें बहुत लिखी है साहब। टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रस्तावना 70 पेज में लिखी है। 70 पेज की प्रस्तावना में ये लिखा कि जितने दुनिया के शुभ कार्य हैं उन समस्त शुभ कार्यों में इस करणानियोग का अभ्यास सर्वश्रेष्ठ। कैसे बताया? कारण दिए उन्होंने, कुछ अभ्यासियों की चर्चा की। यहाँ कोई द्रव्यानियोग का पक्षपाती कहता है कि इस ग्रंथ के अभ्यास में, गोमठ सार आदि ग्रंथ के अभ्यास में तो विकल्प बहुत होते हैं और हमें विकल्प करना नहीं, इसलिए इसका अभ्यास करके हम करेंगे क्या? पंडित जी क्या कहते, सुनो जरा ध्यान से सुनो। रे सूक्ष्माभास, क्या कहा? रे सूक्ष्माभास माने है तो तू आभासी, लेकिन अभी सूक्ष्म आभास रह गया। तूने कहा सो तो सत्य, परंतु गणधर का उपयोग स्वभाव में ज्यादा नहीं परिवर्तता है, तेरा कैसे परिवर्तता है सो बता। क्या लिखा? इसलिए अगर तूने 11वीं गाथा पढ़ी हो समय सार की, तो संग में 12वीं भी पढ़ लेना। क्या कहा? क्योंकि उस गाथा में ये लिखा है। क्या लिखा है 12वीं गाथा में? देखे परम जो भाव उसको शुद्ध न ज्ञातव्य है, ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। अपरम भाव क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की पूर्णता जब तक नहीं हुई है तब तक अपरम भाव कहलाता है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की पूर्णता हुई तो परम भाव प्रकट हो गया। अब परम भाव वाला जो भी वस्तु देखे वो शुद्ध नय से ही देखेगा। अरे पर द्रव्य को भी देखे तो शुद्ध नय से देखेगा। सुन लो जरा, कैसे भाई? पर द्रव्य भी शुद्ध है क्या अशुद्ध है? आत्मा त्रिकाली शुद्ध है, और पुद्गल? अरे एक पुद्गल का विचार करो, वो पुद्गल है। स्कंद पुद्गल नहीं है, पुद्गल का एक एक पर्याय है, मिली हुई पर्याय है। एक पुद्गल परमाणु भी शुद्ध है। कब से? तो जब से एक रहा है तब से। समझाया? तो वो पुद्गल परमाणु भी शुद्ध होता है, और उतना ही शुद्ध होता है जितना ज्ञायक स्वभाव शुद्ध होता है। सुन ले, अंतर ये है, वो शुद्ध हो या अशुद्ध हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अपने लिए अगर अपने शुद्धात्मा की अनुभूति ना हो तो अनंत आकुलता भोगना पड़ती है, और वो शुद्धात्मा की अनुभूति प्रकट हो जाए तो आनंद अनंत आनंद प्रकट होने का चांस सामने आ जाए। सही में ना? मगर दो ही द्रव्य, चार द्रव्य तो अनादि से शुद्ध है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इनमें विकारी पर्याय न अर्थ पर्याय विकारी हुई है, न व्यंजन पर्याय विकारी हुई। इनमें निरंतर सदाकाल स्वभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय चलती है। दो द्रव्य है जीव और पुद्गल, इनमें स्वभाव अर्थ पर्याय भी प्रकट होती है और पहले चलती रहती है, इसमें विभाव अर्थ पर्याय, फिर और व्यंजन पर्यायों में भी विभाव व्यंजन पर्याय वो चलती रहती है, बाद में वो स्वभाव अर्थ पर्याय प्रकट हो जाती है। अनंत भगवान है, अभी विभाव व्यंजन पर्याय है उनमें। कौन सी पर्याय? अरहंत भगवान में विभाव व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय का संबंध प्रदेशों से होता है, जब तक अघाती अकर्म का क्षय न हो तब तक निर्मल व्यंजन पर्याय, चार प्रकार के जो गुण है ना, अवगाहनत्व गुण, आगुर्लघुत्व गुण, सूक्ष्मत्व गुण, इस प्रकार के अवगाहना गुण, ये गुण प्रकट होते हैं कब? जब चार घाती कर्म का क्षय हो, उस समय उनके व्यंजन पर्याय भी पूर्ण हो जाती है, और वो फिर चतुर्गति परिभ्रमण जो विकारी भाव से चलता था वो रुक जाता है, और सिद्धालय में जाकर अचल दशा को प्राप्त करता है। वो स्वभाव व्यंजन पर्याय। सर मैं जो मंगलाचरण में आया है ना, ध्रुव अचल और अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को, ध्रुव और अचल, तो ध्रुवता काय से प्रगति, ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से ध्रुवता प्रगति। वो ध्रुवता क्या है? वो अर्थ पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय प्रकट हो गई उनकी। और व्यंजन पर्याय क्या है? कि अभी विकारी भावों में आरंभ करता था, विकारी भावों में लगता था तो चतुर्गति परिभ्रमण होता था। अब विकारी भावों का के भाव विश्रांत हो गए हैं, इसलिए अब चतुर्गति परिभ्रमण का कारण मिट गया है और वो जो पुराने कर्म थे अघादिया वे भी क्षय को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए अब जो दशा इनकी प्रगटेगी, एक समय में उद्गमन स्वभाव से जब एक बार जहाँ जाके ठहरेगा सिद्धालय में, अब अचल अनंत काल तक एक प्रदेश भी कभी चलायमान वो अचल दशा। अचल दशा में स्वभाव व्यंजन पर्याय दर्शाई है और तुम्हारे से ध्रुव दशा में स्वभाव अर्थ पर्याय दर्शाई। और अनुपम कहकर उसे आप किसी से तुलना दुनिया में कर सकते नहीं, उसको अनुपम दशा से दर्शा। ऐसी सिद्धों की पर्याय है, पर ये पर्याय जितनी कीमती है उससे अनंत गुणी कीमती एक कीमत एक गुण की, और जितनी कीमत एक गुण की है उससे अनंत गुणी कीमत ज्ञाय की। सुना है ऐसा है। देखो यहाँ लिखती बड़े नए चक्र का उदाहरण, अर्थ पढ़ रहे हैं सीधे, गाथा भी लिखी है। तच्चाणे क्षण काले समयम बुझे ही ज्योति मेण आरायण समय पंचखो अनुभवो जम्मा। अर्थ, तत्व के अवलोकन माने अन्वेषण का जो काल उसमें समय अर्थात शुद्धात्मा की युक्ति अर्थात नए प्रमाण द्वारा पहले जाने, ये कहाँ लिखा है? ये बड़े नए चक्र में लिखा है। बड़ा नए चक्र जो है वो मेरा ख्याल है जो डॉक्टर साहब ने जो उसकी टीका बनाई है माइल धवल का बड़ा नए चक्र मिला। इनका तो वो शायद इन्हीं का ही है, अपना देवसेनाचारी का, वो देवसेनाचारी वाला बड़ा है और एक आला पद्धति है वो एक छोटा सा है वो भी देवसेनाचारी का, और ये माइल धवल का वो बड़ा नए चक्र है। उसमें ये लिखा है कि तत्व के अवलोकन या अन्वेषण का जो काल उस काल में यानी वो समय शुद्धात्मा को युक्ति यानी युक्ति माने नए प्रमाण का नाम युक्ति, युक्ति से समझो माने नए प्रमाण से समझो जानो, उसके द्वारा पहले जाने। क्या लिखा है? पहले जाने, कैसे जाने पहले? हाँ तो पहले अनुभव से जाने, ऐसा ऐसे उल्टी गंगा बह नहीं सकती। क्या कहा? पहले नए प्रमाण से जाने, फिर नए प्रमाण के विकल्प छोड़े और अनुभव से जाने, और अनुभव से जानकर अनुभव की वृद्धि करे तो मोक्ष मार्ग हो और मुक्ति हो। स्थापना पूर्वक विसर्जन, सही आया कि नहीं? अब समझते जाना, ख्याल से समझना, संशय हो तो जरूर पूछना, रात में पूछ सकते हो। और हम तो ऐसा, हमारे आंसर देने की शैली ये है कि समय कम है तो उसी का आंसर एक मिनट में देंगे, दूसरा मिनट नहीं लगने देंगे, आइए। और अगर ज्यादा समय है तो वही का आंसर एक घंटा में दे सकते, सही में दो से एक पुद्गल परमाणु एक समय में 14 राज्यों जाता है और धीरे धीरे जाए तो उस 14 राज्यों में जितने प्रदेश वहाँ होते हैं उतना समय ले सकता है, ऐसे में तो ज्ञान कोई उससे कमजोर है क्या? है ज्ञान तो उससे ज्यादा ही बलवान है, इसलिए उसको बताने के लिए केवल तुम्हारे ज्ञान में भर आंसर आना चाहिए। और ऐसा लिखा है पंडित जी ने, वक्ता तो वो है जो पूछे गए प्रश्न को पूरा ना पूछ पाए और उसका आंसर ख्याल में आ जाए, ऐसा लिखा पंडित जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। चलो वापस आ रहे, शुद्धात्मा को युक्ति और नए प्रमाण द्वारा फैले जाने पश्चात आराधन समय जो अनुभव काल उसमें नए प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव में नए प्रमाण नहीं होते हैं, परोक्ष निर्णय करने में नए प्रमाण अनिवार्य होते हैं, इनके बिना तत्व निर्णय होता ही नहीं। तत्वार सूत्र है ना अपना ग्रंथ, उसमें उन्होंने जीवा जीवाश्रव वंश संवर्ण जरा मोक्षा तत्व ये गिनाया, फिर प्रश्न पूछा शिष्य ने हम इनको जाने कैसे, तो कहा पहले नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यासा चार निक्षेपों से जानो, कहें इसके बाद भी उसके स्वरूप को समझे कैसे, तो कह प्रमाण नहीं रधिगमा, और कोई समझने के उपाय है? हाँ और है, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता और भी है कहाँ और भी है सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावार्थ बहुत वैश्य। हम उमा स्वामी को अगर ये कहें कि जी आप क्या कर रहे हो कहाँ तक बताते जाओ, ये कह रहे हैं कि तुम्हारा ज्ञान की सामर्थ्य तुम कह रहे हो कि सर्व भावांतर छिदे ये तो तुम्हारी सामर्थ्य है और तुम घबरा रहे हो दो चार ही क्वेश्चन से घबरा रहे हो तो तुम्हें तुम्हारे ज्ञान का विश्वास नहीं। अरे ज्ञान में ये क्षमता है कि जितना ये पदार्थ है उन सबको जान जाए इतनी क्षमता है नहीं। अब आप ये कह सकते हो अभी हमारा प्रयोजन अनुभूति प्रकट करना है गेयों को जानना नहीं, तो ये कौन कह रहा है कि सब गेयों को जानो। पर आचार्य ये कह रहे हैं कि जिन गेयों का जानना अनुभव के लिए साधक है उन्हें जानना ही चाहिए। जैसे उदाहरण दूं अभी गाथा कौन सी चल रही 181 तो 180 गाथाओं में जो बातें कही गई है वे जानने योग्य है कि नहीं बोलो बोलो साहब। और उन 180 गाथाओं को नहीं जानोगे तो 181 का मर्म कहां से जान लिया, और जान लिया तो 180 भी जानी गई हैं किसी ना किसी तरीके से निरूपण के तरीके में। और ये नहीं कहा जा सकता कि समय सार की 180 गाथा तो ऐसे ही है, ये 181 है, अथवा हम अभी 144 लेंगे तब ये सिद्ध करेंगे कि सर्वश्रेष्ठ गाथा तो पूरे समय सार में। सच कहता हूँ वो आपकी 181 के सामने भी इसको और बड़ी सिद्ध करेंगे, लेकिन बाद में ये जब आगे बढ़ जाएंगे तो आगे वाली जो भी आएगी वो इन सबसे बड़ी होगी। अच्छा 320 नंबर की गाथा वो तुम्हारा संवर अधिकार की गाथा, और संवर में दम क्या है, संवर तो ज्ञान का गेय है, संवर का कर्ता आत्मा होता ही नहीं, निर्जरा का कर्ता आत्मा होता ही नहीं, मोक्ष का भी आत्मा कर्ता होता ही नहीं, क्योंकि वे सब पर्याय हैं और वे सब पर्याय ज्ञान की गेय तो हैं, ज्ञान उन पर्यायों को करे ऐसी ज्ञान में सामर्थ्य नहीं है। तो बोले 300 गाथा सबसे बड़ी हुई है, और गुरुदेव ने भी 320 गाथा पर जो प्रवचन दिए है वो एक बुकलेट छपी पुस्तक छपी है उसके नाम से नाम भूला हूँ नहीं वो एक अलग है, वो तो पहले जो प्रवचन छपा है वो एक दिव्य चक्षु ऐसे कोई नाम थी अद्वितीय चक्षु नाम से छपा, ठीक कह रहे समझ में आएगा नहीं जी भैया। सन 1969 ही में पढ़ चुके थे हम लोग ये जितने भी दिव्य चक्षु और जो जो निकले गुरुदेव के, 1.5-2 महीना तो उनके संग में ही रहे, तो पढ़ने के साथ साथ शाम को जाके जो पूछना है निर्भीकता से पूछते थे, डर नहीं लगता था गुरुदेव, वैसे डरो भी नहीं चाहिए क्योंकि गुरुदेव तो अपने को बच्चे के समान मानते थे, तो बच्चे को काहे का डर पिताजी से। अरे पिताजी का नेचर भी अगर कोई हो, पर हमारे गुरुदेव का नेचर भी बाल सुलभ नेचर था, इतना सरल नेचर था कि आप कल्पना नहीं कर सकते, तो उनसे पूछने में डर नहीं लगता था, और वे भी ऐसे ऐसे सहज भाव से आंसर दे देते थे कि हम कहें कि अभी तो जो जो शंकाएं हों पूछ ही लो, बचना नहीं चाहिए कोई शंका, आपसे पूछ लोगे तो सब समाधान हो जाएगा। एक पत्र लिख करके हिम्मत भाई ने बड़े वर्णी जी से कुछ शंका पूछी, देखना जरा मेरे पास पत्र रखा है वो ऐसा नहीं पत्रावली है ना चौथे भाग में आया है, तो उसमें वर्णी जी ने जवाब क्या लिखा, वैसे भाई इसका अभिप्राय तो इतना ही समझ में आता है, फिर वहाँ अनुभवी पुरुष विराजमान हैं स्वामी जी, अनुभवी पुरुष से भी पूछ लेना सर्व समाधान हो जाएगा, ये लिखा उसने। बोलो बड़े वर्णी जी की चिट्ठी है, मैं सबका माल रखता हूँ, हाँ यहाँ अगर वर्णी जी के समर्थक बैठे हों तो वे भी प्रसन्न हो जाएं, वाह। और हमारा प्रयोजन कोई को प्रसन्न करने का बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान रख लेना, नहीं नाराज करने का तो प्रश्न ही नहीं आता भाई, कहाँ नाराज कहाँ हो रहे, सुन के प्रसन्न नहीं हो रहे, नाराज होने की चांस ही नहीं, ये अनोखी बात अद्वितीय बात जो कभी सुनी नहीं है, काम भोग बंधन की चर्चा सुनी और ये कभी सुनी नहीं, इस बात को सुन के कोई नाराज हो जाए, तो उसकी होनहार विचार के अपने को तो संता ऐसा है क्या कह सकती। आगे देखो साहब, जैसे कोई रत्न खरीदने वाला खरीदते वक्त विकल्प करता है और जब प्रत्यक्ष उसे पहनते हैं तब उसे विकल्प नहीं होता है। इस तरह से आगे एक आखिरी बात करते हैं, जो पांच ज्ञान इंद्रियों और छठे मन द्वारा प्रवर्तता था वह ज्ञान सब ओर से सिमट कर निर्विकल्प अनुभव में स्वरूप सम्मुख हुआ है, क्योंकि वह ज्ञान छह समरूप है, इसलिए एक काल में एक ही ज्ञेय को जानता है। वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ तो अन्य सबका जानना सहज ही रुक गया, रह गया माने रुक गया। वहाँ ऐसी दशा हुई कि बाहर अनेक शब्द आदि हो रहे हों तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ भी खबर नहीं। नए आदि के विचार मिटने से श्रुत ज्ञान भी स्वसन्मुख हुआ है, इसलिए श्रुत ज्ञान भी वहीं लगा है, मति ज्ञान भी वहीं लगा है, पूरा ज्ञान का उपयोग की जितनी ताकत है वो स्वरूप में लगी है, निर्विकल्प दशा है। अब पंडित जी एक आखिरी प्रमाण दे रहे, ऐसा वर्णन समय सार की आत्मख्याति टीका में है और आत्मावलोकन आदि में भी है, इसलिए निर्विकल्प अनुभव को अतीन्द्रिय कहते हैं, क्योंकि इंद्रियों का धर्म तो ये है कि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द को जाने, यहाँ वह यहाँ नहीं है। मन का धर्म ये है कि अनेक विकल्प करे, सो वह भी यहाँ नहीं है, तो अनुभव के काल में द्रव्य मन का आलम्बन भी छूटा और पंचेंद्रियों का आलम्बन भी छूटा, भाव मन जरूर अंतर स्वरूप में प्रवर्तन कर रहा है, ऐसा है ना। भाव मन प्रवर्तन कर सके, भाव मन ना हो तो केवल ज्ञान हो जाए, समझा ना। शुद्ध ज्ञान का जो उत्कृष्ट भेद है वो भाव मन है, पर वो विकल्प कराने वाला तब बनता है कि जब द्रव्य मन का आलम्बन लेवे तो विकल्प का कारण होता है, और द्रव्य मन का भी आलम उस तरफ से पीठ कर ली, उपयोग हटा लिया और स्वरूप में उपयोग को जमा दिया, अब विकल्प होने का प्रश्न नहीं है, अब तो निर्विकल्प अनुभूति ही होगी, और उसको मन जनित भी बोला जाता है अनुभूति को, मालूम आपको, मन जनित भी बोला जाता है अनुभूति को। इस तरह इसलिए ज्ञान इंद्रिय मन में प्रवर्तता था, वही ज्ञान अब अनुभव में प्रवर्तने लगा, यानी पहले इंद्रियों के अधीन प्रवर्तता था, मन के विकल्पों में प्रवर्तता था, अब अनुभव में प्रवर्तता है, तथापि इस ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान का क्या नाम हो गया? अतीन्द्रिय। ऐसा अंत में वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव याको, अनुभव चिंता मणि रचन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव ऐसा मोक्ष स्वरूप अनुभव है, वो अपन को प्रकट करना है, हमेशा इसका उद्यम चलना चाहिए। रोज अपन अपनी दुकान में कितना लाभ होता जाता, पैसा बढ़ते जाते हैं, मगर संतोष नहीं होता। जिनवाणी के अभ्यास में संतोष मत कर बैठना, नहीं तो डूब जाओगे। जिनवाणी के अभ्यास को जितना भी हो विशेष विशेष जानने में उपयोग लगाना, क्योंकि सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवे, सामान्य शास्त्र बल्कि ऐसा कहा गया है अंग्रेजी कहावत में, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, क्या कहा, एंड स्पेशल
हाफ नॉलेज इज डेंजरस।
हाँ, तो यहाँ तो ये विस्तार में जाना चाहिए। पंडित जी तो उन्होंने अपने अष्टपावड की टीका में सूत्र पावड में भी लिखा है, पंडित जयकिशन जी साहब ने और पंडित जी ने भी लिखा है कि यद्यपि ज्ञान तो आत्मा का कल्याण तो तुष्मास भिन्न से हो जाता है, काज हो जाता है, इतना ही ज्ञान हो तुष्मास भिन्न, यानी छिलका भिन्न और तुष का जो मास भिन्न माने वो दाल भिन्न, इतना ज्ञान हुआ और अंतर सन्मुख हो गए तो यहाँ राग भिन्न है, रागादि भाव भिन्न, द्रव कर्म भिन्न, नू कर्म भिन्न और सारे पर्याय भी भिन्न और उनके विकल्प भी भिन्न, मैं तो एक या एक मात्र हूँ ऐसा अनुभव किया और उनको सिद्धि होगी। तो पंडित जी ने लिखा ये दृष्टांत मुझे मत बताना कि तुम्हारे से तुष्मास भिन्न से भी तो सिद्धि हो जाती, क्यों नहीं बताना कि जैसे किसी को गड़ा हुआ धन मिल जाए ऐसे में और वो धनवान बन जाए तो सबको मिल जाएगा, ये जरूरी नहीं है, और ये उसको देख कर तुमने अपनी दुकान बंद करी तो भूखे मर जाओगे, ये लिखा है पंडित जी ने, टोटल मंडी समझाया। इसलिए जितने जिनाधम के प्रमाण हैं, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाने वाले भरत चक्रवर्ती हैं, और एक साल में ज्ञान केवल ज्ञान पाने वाले बाहुबली हैं, और 1000 वर्ष में केवल ज्ञान पाने वाले, इन तीनों में तुम्हें कौन सा मार्ग ज्यादा सरल लगता है? बोलो, सब बोलेंगे वो ही अच्छा है, भरत चक्रवर्ती वाला। तुम्हें कभी भरत चक्रवर्ती बनने का चांस नहीं आएगा, पहले तो ये समझ लो, क्योंकि भरत चक्रवर्ती दो नहीं होते। क्या कहा? इसलिए जो दो हो सकते हैं वो ही मार्ग अपनाओ। राजमार्ग में सब चल सकते हैं, और जो कहना चाहिए अपवाद मार्ग है वो सबके चलने को नहीं है, कोई बिरले ही चल पाते। हाँ, इसलिए निरंतर जिनवाणी का अभ्यास करना। जिनवाणी के अभ्यास में संतुष्ट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्ञान की वृद्धि से नुकसान नहीं, ज्ञान की विपरीतता से नुकसान। ये बात विशेष टाइम हो Oh.